તારીખ 31/12/1996 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 50 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 426
50 નંબર વિરોધ કેવી રીતે થાય એની ચર્ચા ચાલી છે. ભાવ કર્મ એટલે આત્માના વિભાવ ભાવ, વિકારી ભાવ, રાગ દ્વેષ.
એને ચિઠ્ઠી છે કોઈની, એનો જવાબ
છે ના? આ છે અત્યારે તો પેન્શનની તકો ચર્ચા. 50મો પ્રશ્ન છે. ઉત્તર આપ્યો છે કે મૂળ ભાવ કર્મ જ કર્મ છે. મૂળ કર્મ કયું છે? ભાવ કર્મ. પરમાણુ ન લીધા દ્રવ કર્મ ભાવ કર્મ ને લઈને બંધાયા કરે છે. દ્રવ કર્મ જીવની સાથે જે પરમાણુ દ્રવ કર્મ બંધાય છે એ ભાવ કર્મ ને કારણે બંધાય છે, નિમિત્તે બંધાય છે. જો ભાવ કર્મ નો નિરોધ થાય, નિરોધ એટલે અટકી જવું, ઉત્પન્ન નહીં થવું, એને નિરોધ કહે છે. જો ભાવ કર્મ નો નિરોધ થાય તો દ્રવ કર્મ નો નિરોધ થાય જ છે, એટલે આપોઆપ દ્રવ કર્મ આવતા નથી. અનાદિકાલથી તે બધા કર્મનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ કર્મનો નાશ કરવાનો જે સાચો ઉપાય તેને ગ્રહણ કરતો નથી. શું છે? એટલું ખબર પડે છે કે કર્મનો નાશ કરી અને મોક્ષ પામવું જોઈએ. એમ જીવ પ્રયત્ન કરે છે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો, કર્મનો અભાવ કરવાનો, પણ કર્મનો નાશ કરવાનો જે સાચો ઉપાય છે એ ઉપાયને ખબર નથી અને ગ્રહણ કરતો નથી. ખબર જાણવા મળે તો એ ઉપાય કરતો નથી. તું બહારથી બધું કર્યા કર, તેનાથી કંઈ કર્મનો નાશ થતો નથી. એટલે બાહ્ય ક્રિયા, બહારથી કર્યા કર એટલે બાહ્ય ક્રિયા. ઉલટાનું કર્મ બંધાયા કરે છે, શુભ શુભ ક્રિયાથી પુણ્યમન થયા કરે છે. તું શુભ ભાવો કર્યા કરે છે, કર્મ કે સંબંધ મેં ચર્ચા ચાલ રહી હૈ કે કર્મ કા અભાવ કેસે કરના. તો મૂળ મેં તો ભાવ કર્મ વિભાવ ભાવ હૈ વહી કર્મ હૈ. દ્રવ્ય કર્મ ઇસકે નિમિત્ત સે જીવ કો બંધન કરતા હૈ. શુભ ભાવ તું ક્યા કરતા હૈ, પરંતુ વહ શુભ ભાવ સે કર્મ કા નાશ નહીં હોતા હૈ, પુણ્ય કા બંધન હોતા હૈ. બંધ ઓર મોક્ષ વિરુદ્ધ હૈ, બંધ ઓર મોક્ષ પરસ્પર વિરુદ્ધ હૈ. તો જીસ ભાવ સે બંધ હોવે ઉસ ભાવ સે મોક્ષ નહીં હો સકતા. તો શુભ ભાવ સે તો પુણ્ય બંધ હોતા હૈ, મોક્ષ તો નહીં હોતા. લેકિન મોક્ષ કા ઉપાય જિસકો માલુમ નહીં, વો લોગ અનજાને હૈ મોક્ષ કે ઉપાય સે, ઇસલિયે શુભ ભાવ કો મોક્ષ કા ઉપાય જાનકર વો મુક્ત હોને કા પ્રયાસ કરતે હૈ. પરિસ્થિતિ ઉલટી હોતી હૈ, કો બંધન મેં પડતે હૈ. મોક્ષ તો નહીં હોતા, પરંતુ વો બંધન મેં આતે હૈ. પુણ્ય બંધન હોતા હૈ અર્થાત દ્રવ્ય કર્મ તો વૈસા કા વૈસા બંધન કરતા હી રહેતા હૈ. જબ તક ભાવ કર્મ કા નાશ નહીં હોતા તબ તક દ્રવ્ય કર્મ કા નાશ નહીં હોતા. ભાવ કર્મ કા નાશ નહીં હોવે ઓર દ્રવ્ય કર્મ કા નાશ હો જાય એસા તો કભી નહીં બનતા. શાસ્ત્ર મેં આતા હૈ ને કે અજ્ઞાની જો કર્મ લાખ કરોડ ભાવ મેં ક્ષય કરતે હૈ, ઇતને કર્મ જ્ઞાની એક ઉચ્છવાસ માત્ર મેં ક્ષય કરતા હૈ. મેં ક્ષણ માત્ર મેં ક્ષય હો જાતા હૈ જ્ઞાની કો. અજ્ઞાની અશુભ ભાવ મેં સે શુભ ભાવ મેં ખડા રહેતા હૈ, परंतु इससे तो भाव कर्म वैसे के वैसे खड़े रहते हैं, और भाव कर्म खड़े रहते हैं इसलिए द्रव्य कर्म का नाश नहीं होता, वास्तव में उसे निर्जरा नहीं होती, जीव को शुभ भाव से निर्जरा नहीं होते, नया बंधन होता है निर्जरा नहीं होते, अशुभ भाव की निर्जरा होती है वो वास्तविक निर्जरा नहीं है, मात्र शुभ भाव करने से कर्म का आश्रय दुखता नहीं। तो आत्मसिद्धि शास्त्र में गोपाल देव ने भी वो बात स्पष्ट की है, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। मोक्ष कब मिले कि शुभ और अशुभ का छेद मैंने नाश करे तब। उसमें ऐसा नहीं लिया कि शुभ को पालन करे और अशुभ का नाश करे तो मोक्ष उत्पन्न हो, ऐसा नहीं लिया। शुभ और अशुभ दोनों को छेद करे तभी मोक्ष होता है, वो बात आत्मसिद्धि शास्त्र में भी आई है। अंदर भाव कर्म का निरोध किस प्रकार से होता है उसका उपाय के लिए परम गुरु सत्पुरुष का आश्रय लेना, जो कृपालु देव बात करते हैं बार बार, कोई बात किया है तो ऐसे ऐसे पढ़ा ना, बताई थी कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, हाँ थोड़ा थिंक ओवर करना है, अनजाने को गुरु की आवश्यकता रहती है। अंदर भाव कर्म का निरोध कैसे होता है उसके उपाय के लिए, भाव कर्म अपना है उपादान का जी, उसका नाश करने के लिए परम गुरु सत्पुरुष का आश्रय लेना, सकल मोह राग द्वेष का क्षय करना हो यानी मोक्ष। सकल राग द्वेष का क्षय होने से क्या होता है, मोक्ष होता है। तो जिसको मोक्ष करना हो तो परम गुरु का आश्रय लेना, परम गुरु तुझे मार्ग दिखाएगा, बताएगा कि भाव कर्म का निरोध कैसे होता है वो बताएगा। अपने आप अनजाना जीव कभी प्राप्त नहीं कर सकता, तो दोस्तों शास्त्र में भी कृपालु देव ने एक बात लिया है, सत सरल है सुगम है परंतु सत को दिखाने वाला सत चाहिए, इसके सिवा जो खुद ही अंधा है वो क्या देखेगा। आनंद घंजी ने भी गाया है, प्रवचन अंजन जो सदगुरु करे देखे परम निधान जिनेश्वर।
हृदय नयन निहारे जगत महिमा मेरु समान,
महिमा मेरु हृदय नयन मैंने अंतर के हृदय से जगधनी मैंने अपने परमात्मा को जो निहालता है देखता है तो उसको मेरु समान इसकी महिमा आती है, अरे मेरा परमात्मा कितना महान है, महिमा मेरु समान धर्मनाथ भगवान सुतमन से धर्म जिनेश्वर गाँव हो रंग। अंदर मां तू चैतन्य देव को ग्रहण कर, और जो यह भाव कर्म का उद्भव होता है उससे तो भिन्न पड़, वेद ज्ञान कर, भाव कर्म से भेद ज्ञान कर, भिन्न पड़ मैंने भेद ज्ञान कर, अलग हो जा, एकत्व कर रहा है तुम अलग हो जा। जो यह भाव कर्म मैंने विभाव भाव होता है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उससे अलग नायक हूँ ऐसा नायक देव को ग्रहण कर तो भाव कर्म का निरोध होगा वेद ज्ञान करने से। भाव कर्म से वेद ज्ञान कराया है वास्तव में। फिर द्रव कर्म से भिन्नता स्वतः अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। तू चैतन्य की परिणति, चैतन्य का कार्य प्रकट कर तो भाव कर्म की क्रिया तेरे से भिन्न पड़ेगी। चैतन्य का आश्रय कर, चैतन्य परिणति प्रकट कर, आत्म परिणति प्रकट कर, भाव कर्म भिन्न हो जाएगा। भाव कर्म मैंने अपने राग द्वेष मोह आदि विभाव भाव, उसको कहते हैं भाव कर्म। क्या? राग द्वेष मोह आदि विभाव भाव, उसको कहते हैं
भाव कर्म।
भाव कर्म से भेद ज्ञान कर कि मैं भिन्न हूं। चैतन्य के कर्ता कर्म क्रिया सब मेरे में है। आत्मा का कर्तपणा कर्मपणा क्रिया छोकार को आत्मा में है। भाव कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा विभाव भाव जैसा नहीं है, ऐसा उनका स्वरूप ही नहीं है। उस प्रकार से उससे भिन्न पर अंतर में उस प्रकार से इस रीति से उनसे अलग हो जा। भाव कर्म का निरोध कब होता है कि जब चैतन्य की परिणति प्रकट होती है
तब।
परिणति की बात तो बैठी की चर्चा में तो आएगी, खास पद्धति उनकी ऐसी है। चैतन्य की परिणति प्रकट हो गई, मैं आत्मा हूं ऐसी परिणति प्रकट हो गई तो वेद ज्ञान हुआ। जब तक परिणति नहीं हुई तब तक वेद ज्ञान सफल नहीं हुआ है। प्रयास होना अलग बात है, सफल नहीं हुआ है उतना लेना। नायक देव की जो नायक रूप से परिणति होती है, नायक देव की जो नायक रूप से परिणति होती है और भाव कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, उस प्रकार से इससे जुदा पड़ता है, अलग पड़ता है तो अनंतानुमंदी का जो भाव कर्म होता है ये सब टूट जाएगा। वेद ज्ञान होने से जब आत्म परिणति प्रकट हो जाएगी तो अनंतानुमंदी के जो भाव कर्म है वो तो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार उसी जाति का द्रव कर्म भी टूट जाएगा। हाँ, वही वास्तव में तो वही भाव कर्म है। शुभ भाव भी भाव कर्म है, अशुभ भाव भी भाव कर्म है, दोनों भाव कर्म है। जीव अशुभ में से पलट करके शुभ में आता है और शुभ में से पलट करके अशुभ में आता है, तहां वहां तक वो भाव कर्म में ही चल रहा है। भाव कर्म का वहां निरोध नहीं हुआ ऐसा लेना।
विकल्प मात्र भाव कर्म,
विकल्प मात्र भाव कर्म, राग का एक कण भी भाव कर्म ले लेना तो उसके जाति अपेक्षा से चार प्रकार लिया है, अनंतानुबुद्धि, प्रत्याख्यान वर्णी, अप्रत्याख्यान वर्णी और संजलन। तो सबसे पहले भेद ज्ञान से क्या होता है, अनंतानुबुद्धि का भाव कर्म जाता है। प्रकृति जो है वो अलग अलग गुण स्थान में क्षय होती है। मुख्य जो चार प्रकृति है, क्रोध मान माया चारित्र मोह, वो चार प्रकृति ऊपर के गुण स्थान में क्षय होगी। आत्मज्ञान होने पर तो क्षय नहीं होती है, उसकी जाति बदल जाती है, अनंतानुमंदी की जाति खत्म हो जाती है, उतना फर्क पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, भाव कर्म में तो रस टूट जाता है, इसलिए मुमुक्षु की भूमिका में मुमुक्षु भी रस कैसे टूटे उस प्रकार का प्रयोग करता है। परिभ्रमण की चिंतना से लेकर के ऊपर के जितने भी स्टेज प्रयोग के हैं वो सब रस तोड़ने के हैं। दोनों का, क्योंकि अशुभ है उसकी उत्पन्न होने की मर्यादा पंचम गुण, पंचम गुण स्थान तक वो उत्पन्न होता रहेगा, छठे गुण स्थान से अशुभ की उत्पत्ति नहीं। तो इसके पहले कोई मुमुक्षु चाहे कि हमको अशुभ नहीं होना, अकेला शुभ ही होना, तो वो तो संभव नहीं है, वो बन पाएगा नहीं, बन सकता नहीं, ऐसी बात है। शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों विभाग में चलता है, पर जब तक भेद ज्ञान से सहानुभूति नहीं हुई उसके पहले अनंतानुमंदी चालू है। ये विकल्प भाव कर्म है, ये विकल्प भाव कर्म है, उसमें क्या है, उतना स्थूल नहीं लेना है। जो मुमुक्षु की भूमिका है तो उसमें कुछ सूक्ष्म बातें हैं वो समझनी है, क्योंकि हम जब भाव कर्म की और शुभाशुभ की चर्चा करते हैं तो उसमें अकेला चारित्र मोह की गिनती है। चारित्र मोह का तदभाव अभाव, उसकी हम कैलकुलेशन, उसकी गिनती कर रहे हैं, जबकि आत्मा का संबंध बंध और मोक्ष अकेला चारित्र से नहीं है। मोक्ष मार्ग में तीन मुख्य गुणों की प्रवृत्ति है, श्रद्धान ज्ञान और चारित्र, और पुरुषार्थ साथ में जोड़ता है, तो वीर गुण चतुर्थ गुण की भी प्रवृत्ति मुख्य रूप से है। चार मुख्य गुण कार्य करता है और इसका फल स्वरूप सुख दुखाता है, जैसे पांचवा गुण का प्रवेश रिजल्ट के परिणाम के स्वरूप में, फल के स्वरूप में लिया जाता है। अब मुमुक्षु अकेला शुभ अशुभ की चर्चा करें और उसमें फेरफार करने का हम विचार करें तो दूसरे दो गुण के कार्य में कब क्या होना चाहिए वो बात रह जाएगी। प्रश्न परमचंद जी ने अच्छा उठाया कि मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है, ये भी एक विकल्प है, इसका भी अभाव करना चाहिए। हाँ, विकल्प मात्र का अभाव करना चाहिए, उसमें कोई दो राय, परंतु मुमुक्षु की भूमिका में कुछ बात और भी है। वो क्या है कि मुमुक्षु को सबसे पहले चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त होता है, तब ज्ञानी बनता है। वो चतुर्थ गुण स्थान में उसको सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है तब उसका मिथ्या श्रद्धान यानी दर्शन का अभाव होता है। अब देखिए कि सबसे जीव का कोई बड़ा दुश्मन है तो वो दर्शन है, शुभाशुभ भाव बड़ा दुश्मन नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि सिपाही के साथ तो लड़ाई करते हैं और राजा देखता रहता है कि चलो इसकी शक्ति चुपाई के साथ खत्म होती है तो होने दो, मैं तो खड़ा हूं, तो वो तो मुझ में हंसेगा, वाह ऐसा बेचारा भूल भूल करता है, अनाधिकार से सुबह सुबह से लड़ाई खड़ा करता है, इधर घुमाता है लाठी, इधर घुमाता है तलवार, इधर घुमाता है, कुछ अशुभ को तोड़ता है, शुभ में आता है, परिस्थिति वो की वो रहती है। क्यों? दर्शन हो, राजा तगड़ा है, बलवान है, तो जब आत्मकल्याण की भावना उत्पन्न होती है किसी भी जीव को, संसारी जीव को, अंतर से आत्मकल्याण की भावना होती है, तब वो जीव तभी नहीं, जब अंतर से भावना होती है तब वो जीव को प्रथम दर्शन मोह कमजोर होता है, उसकी लड़ाई दर्शन मोह से चालू होती है। जब दर्शन मोह से लड़ाई करने वाले भाव होते हैं, भले ही वो भाव कर्म हो, उस भूमिका में उसका निषेध नहीं किया जाता है। हाँ, सबसे पहले भावना आनी चाहिए कि मुझे मेरा आत्मकल्याण कर लेना है, हर हालत में, किसी भी हालत में मुझे मेरा आत्मकल्याण करना है, करना है और करना ही है। ये भावना से सबसे पहले दर्शन हो गलेगा और वो सही कार्य पद्धति है, वो सही कार्य पद्धति है, यहां से चालू हो जाना चाहिए। तो दर्शन मोह को काटते काटते काटते, कमजोर करते करते करते, उतने हद तक ले जाते हैं, क्योंकि उसके स्वानुभव के पहले भी भेद ज्ञान चलता है, भेद ज्ञान के फल में स्वानुभव होता है, निर्विकल्प स्वानुभव, तो उसके पहले भी विकल्प है, लेकिन ये विकल्प विकल्प बढ़ाने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए। क्यों? कभी दर्शन मोह का अनुभव टूटता है, दर्शन मोह का अनुभव टूटता जाता है। इस तरह से सबसे पहले दर्शन मोह को मारा जाता है। तो मुमुक्षु की भूमिका के कार्य पद्धति में दर्शन मोह को कैसे मारे, ये कार्य पद्धति सही कार्य पद्धति, तो अनंतानुमंदे की जात बदलेगी। राग मात्र अभाव करने योग्य है, बात तो सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन वैसे अभाव होता नहीं, बराबर उसकी जात पलटती है, विकल्प की जात पलटेगी, शुभ अशुभ दोनों रहेगा, ज्ञानी को भी शुभ अशुभ दोनों रहेगा, पंचम गुण स्थान तक रह सकता है, लेकिन जात पलट जाएगी। तो जो कार्य पद्धति है वो पद्धति से काम करने से सफलता मिलती है, पद्धति छोड़ करके काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, रस है वही परिणाम की शक्ति है, परिणाम में दो शक्ति है, शुद्धत्व शक्ति और अशुद्धत्व शक्ति। तो अशुद्धत्व जो है, अशुद्धपना, अशुद्धत्व मैंने अशुद्धपना को परिणाम के रस में है, तो रस को तो पहले से ही ठंडा करना चाहिए। अशुद्ध प्रकृति को नहीं, रस दोनों का ठंडा नहीं, जब राग का रस टूटता है आत्मकल्याण की भावना से, तब शुभ अशुभ दोनों का रस ठंडा होना होता है। नहीं, अशुभ को छोड़ने से पात्रता आती है वो सिद्धांति नहीं है, अशुभ छूट जाएगा तो पात्रता आ जाएगी, वो वस्तु का स्वरूप नहीं है, क्योंकि द्रवलिंग में तो अशुभ सब छोड़ दिया तो पात्रता कहाँ आई है, इसलिए अशुभ छोड़ने से पात्रता आती है वो बात तो है ही नहीं। पात्रता आत्मकल्याण की भावना से आती है और उसमें सभी प्रकार के राग रस ठंडे होते हैं, पहले ठंडे होते हैं, फीके होते हैं, तो ये जो रस है उसको मंद करना वो बात तो सही है, लेकिन उसमें शुभ अशुभ की गिनती नहीं है कि अशुभ को ऐसा करना शुभ को ऐसा करना, वो बात नहीं है, क्योंकि वो चारित्र मोह में जाता है और हमारी लड़ाई दर्शन मोह से चालू होती है। चारित्र मोह से हम उस वक्त चारित्र मोह के सामने नहीं देखते हैं, लेकिन चारित्र मोह में रस तो ठंडा होता ही है, वो स्वतः है। दर्शन मोह की लड़ाई के साथ साथ चारित्र मोह में रस ठंडा होता है, तो रस का नाप है वो बाहर से होता नहीं, रस का नाप बाहर से हो ही नहीं सकता, वो सबके अपने अपने अनुभव का विषय रहता है व्यक्तिगत रूप से, ऐसी बात है।
ચારિત્ર રૂપી પાડો
ખાઈ ગયો,
રાણો ખાઈ ગયો,
વિદ્યાત
રૂપી પાડો, એક રાડે ખસે તો આવા પૂળા તું ખાઈ ગયો બહુ, એ
બરાબર સહી વાત,
ઉપદેશ એમ
જ્ઞાન રૂપી પાડા સબ ખા
ગયા।
तो शास्त्र में भी हुआ है कि जीव द्रव्यलिंगी होता है साधु, तो उसका सब प्रकार का अशुभ भाव और अशुभ क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, फिर भी वो अनंत संसारी होता है। गुरुदेव तो खास लेते थे वो गाथा छह ढाला के, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव को बुझा जाओ, पर आत्मज्ञान बिन लेश सुख भी नहीं पाया, तो इसका मतलब कि उसने दर्शन मोह को खत्म नहीं किया, चारित्र मोह को मंद किया, बहुत मंद किया, कितना भी बहुत मंद किया, लेकिन दर्शन मोह जहां तक जीवंत है वहां तक तुम्हारी चारित्र मोह की लड़ाई सफल होने वाली
नहीं
है, क्योंकि वो परिस्थिति हो ही जाएगी, क्योंकि दर्शन वो चीज ऐसी है।
वैसे एक सवाल कुछ भी चला जीव जारे शुरुआत में आवे धर्म जो आवे से देवगुरु शास्त्र कौन सारा आत्म सामने रे वे यहां शुरुआत में ये राग ने मंत्रता करके तथा सब पुरुष की सामने बदलता बदलता भी कई से एक पर पहुंचे से जो जारे देवगुरु शास्त्र ने यही माने नहीं चले आज एक से के प्रश्न
ओ एक समझने की बात है
प्रश्न
निश्चय प्रधानता के कथनों में वो बात
आती है,
तो मुमुक्षु को वो कब है होती है वो प्रश्न है ना, तो मुमुक्षु की भूमिका में वो बात नहीं है,
कौन सी स्टेप पे है
वो, तो अपने स्वरूप में स्वरूप की उपादेयता में आकर के लीन हो गया तब की बात है, कि उसको देवगुरु शास्त्र का कोई लक्ष्य नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रहा, तो स्वतः ही हो गया, लेकिन मुमुक्षु की भूमिका के वो बात है
नहीं, जानते हुए भी
जानते वो जानने की बात है, मुमुक्षु की भूमिका में वो बात नहीं होती है, मुमुक्षु की भूमिका में सतदेव सतगुरु और सतशास्त्र के प्रति भक्ति बहुमान के परिणाम दर्शन मोह को गालते हैं, मोक्ष की भूमिका में वो बात है, तो हमारी लड़ाई दर्शन मोह से, इसलिए मोक्ष की भूमिका में वो बात उसमें सुगानी जी के वचनों की अपेक्षा में मान्यता की अपेक्षा है, श्रद्धा की अपेक्षा है, तो श्रद्धा तो पहले से ही ऐसी है कि किसी भी परद्रव्य से लाभ नहीं होता, श्रद्धा में तो वही बात है, लेकिन परद्रव्य निमित्त नहीं होता वो बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान में उसी वक्त जानते हैं, श्रद्धा में क्या है वन वे ट्रैफिक है, ज्ञान में टू वे है, तो जब श्रद्धा वो श्रद्धा करती है कि किसी पर द्रव्य से मुझे लाभ नहीं होता, उसी वक्त ज्ञान जाता है, जानता है कि देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना ज्ञान किसी को होता नहीं है, सच्चे देव गुरु शास्त्र नहीं मिले और किसी को ज्ञान हो जाए अनंत काल में किसी को होता
नहीं है,
तो गुरुदेव तो कहते थे कि निमित्त से कार्य होता वो भी मिथ्या दृष्टि, और निमित्त बिना कार्य हो जाता है वो भी मिथ्या दृष्टि। दोनों बात क्यों बोलते हैं? बात तो परस्पर विरुद्ध हुई कि नहीं? हेतु से देखा जाए तो दोनों बात अविरुद्ध है, और बिना हेतु देखा जाए तो दोनों बात विरुद्ध है। हेतु पकड़ना चाहिए कि कोई भी कथन करने के पीछे कुछ मोटिव तो होता है। जोर तो अपना उपादान पर ही आना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है, अपने उपादान पर ही जोर आना चाहिए। क्यों? तो वरना परलक्ष हो जाएगा एकांत। इसलिए जोर कोई दूसरे पदार्थ पर देना है वो बात है ही। हाँ, तो बहुत सी बातें हैं इसमें। तो गुरुदेव खुद ऐसा भी कहते हैं कि जो सच्चे देव गुरु शास्त्र का विवेक है वो तो निमित्त का विवेक बोला जाता है। मानते हैं तो जो सच्चे को मानने में उसको आप इस तरह से निषेध कर दो कि ये तो निमित्त का विवेक हो गया, तो क्या नहीं वो उपादान का विवेक है। और गुरुदेव ने क्या याद किया है मालूम है? उसने कुंद आचार्य की पंच परमेष्टि की भक्ति को, ये मेरे दीक्षा का प्रसंग है, मैं प्रत्येक तीर्थंकर को और सभी तीर्थंकर को, सभी सिद्धों को और प्रत्येक सिद्धों को नंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मेरी दीक्षा में आने के लिए आमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग पधारो मेरी दीक्षा।
हाँ जी,
क्या भावना है, कितनी उत्कृष्ट भावना है।
दूसरे ढंग से भी ऐसा बोला है वैष्णव, आत्मा का चिटकने का अनादि का स्वभाव है। अभी बाहर घूमते घूमते अभी रात कुछ जगह पे नहीं गया, अभी यहाँ देव गुरु शास्त्र पे गया है, तो गुरुदेव का ज्यादातर हर ये चीज देखा कि जिनका जो चिटकने का स्वभाव है इसको निकालने के लिए पहले से बता देते हैं कि देव गुरु शास्त्र पे थे, इसलिए मैंने प्रश्न।
वैज्ञानिक परिस्थिति का एक दृष्टांत बहुत बढ़िया है इसमें। घड़ा ऊंधा पड़ा है, हमको पानी भरना है, सीधा करेंगे तो पानी भरा जाएगा, ठीक है? अब आड़ा हुए बिना सीधा होना चाहिए, ये कभी संभव है? हाँ, तो आड़ा होता है उसमें पानी तो नहीं भरता है, सीधे घड़े में पानी भरता है। लेकिन जो ऐसा बिना समझे आग्रह रखता है आड़ा होना ही नहीं चाहिए, आड़ा क्यों होता है वो समझता नहीं है, तो सीधा करने को नहीं समझता है, पानी तो कहां से भरेगा। इसलिए जो स्थान में जो बात है वो स्थान में वो बात 100% स्वीकार कर लेना, आड़ा करना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, 100% आड़ा होना चाहिए फिर सीधा होएगा। तो आड़ा होना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पानी नहीं भरता, भर सकते, वो बात बनने वाली नहीं है। तो देव गुरु शास्त्र के प्रति परिणाम जाता है उसमें घड़ा आड़ा होता है, ऊंधा घड़ा को आड़ा घड़ा किया 50% काम हो गया इसका, 180 डिग्री का एंगल है, 90% आड़ा हो गया। गुरुदेव को कुछ लोग प्रश्न करते थे कि आप तो बहुत निश्चय प्रधान बातें करते हैं,
हमको
ठीक नहीं लगती है ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो गुरुदेव कहते थे कि भाई ठीक है, वो तो अपनी अपनी समझ की बात है, तो ऐसा नहीं था, लोगों को कुछ फायदा होना चाहिए ना आपका उद्देश्य, फायदा नहीं होगा ऐसी बातों, बड़ी ऊंची ऊंची बात करने से फायदा नहीं होगा। तो कैसे? तो कि देखो, कोई उपवास नहीं करते, कोई शुभ क्रिया इतनी नहीं करते, अशुभ में तो पड़े ही हैं, क्या फायदा हुआ? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से एक बात को बताया है ना कि देखो तुम क्या देखते हो, कि उसका असुर कितना घटा, सुख कितना हुआ, उसमें तुम देखते हो। लेकिन ये बात सुन करके इसके श्रद्धा ज्ञान में क्या फर्क हुआ, उसका मिथ्यात कितना मंद हुआ, उसका अज्ञान कितना मंद हुआ, वो बात तुम्हारे ध्यान में नहीं आई। पर जो लाभ करेगा मूल में वो वहां से लाभ होगा। बाकी तो अशुभ छोड़ करके शुभ तो बहुत किया अनंत मार, लेकिन यथार्थ प्रकार से मिथ्यात को और अज्ञान को मंद नहीं किया। और बाह्य दृष्टि जीवों का सिर्फ शुभ शुभ पर ही ध्यान जाता है, दर्शन और अज्ञान के विषय में खुद कुछ समझते नहीं, जानते नहीं, इसलिए उसमें किस प्रकार से यथार्थ लाभ कैसे होता है, फिर पार क्या होता है, विकास कैसा होता है, प्रारंभ कैसा होता है, उसका पता नहीं है। ये गड़बड़ होती है। तो ये बाह्य दृष्टि वालों का पता नहीं लगता इस मार्ग में, बाह्य दृष्टि वालों को इस मार्ग का पता नहीं लगता है। यहां कहते हैं कि अनंतानुबंधी का जो भाव कर्म होता है वो पहले टूट जाएगा, बाद में अल्प अस्थिरता के भाव कर्म रहेंगे। जो तीन चौकड़ी रही वो अल्प अस्थिरता वाली है, संख्या में 12 है, फिर भी वो जो 4 गई उसकी महत्ता बहुत है। ये तो सब पंगु हो गए, चारित्र मोह के विभाव सब पंगु हो गए, निराधार हो गया। उसको आधार तो इसके जिसका मिलता था वो आधार टूट गया, निराधार हो गया। अब उसका कोई इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी धीरे धीरे जाएगी, वो भी धीरे धीरे अब रहने वाली नहीं है। इसके लिए दृष्टांत भी शास्त्रकार देते हैं कि जिस पेड़ का खत्म कर दिया, चाहे पेड़ कितना भी बड़ा हो, जिसका मूल जल गया, वो पेड़ कितना भी बड़ा है, बड़ा दिखता है, हरा भरा दिखता है, लेकिन लंबे काल तक वो हरा भरा रह सकता नहीं, सूख जाएगा बिल्कुल। और एक एक पत्ता को सुखाने को जाएगा,
मर जाएगा,
पर मूल में पानी मिलता रहेगा, नए नए पत्ते आते रहेंगे। तो जो भगवान का जो मार्ग है, तीर्थंकर देव का मार्ग है, और कृपालु देव कहते हैं कि ज्ञानी का मार्ग है, उसमें खास प्रकार की कार्य पद्धति का निर्देश है। क्या है? खास प्रकार की कार्य पद्धति का निर्देश है इसमें। वो खास प्रकार के कार्य पद्धति को हम नहीं समझेंगे जहां तक, वहां तक ये ज्ञानी का मार्ग या तीर्थंकर देव का मार्ग का पता नहीं लगेगा। इसलिए तो भाव कर्म से अलग पड़ जा कि मैं भिन्न हूं, अर्थात तू भाव कर्म से तू भेद ज्ञान कर, उससे जुदा भाव कर्म से भेद ज्ञान कर। भेद ज्ञान भाव कर्म से चालू होता है। जिससे तू एकमेक हो गया है उससे अलग हो, अलग पड़ जा। अलग पड़ेगा तो वो टूटेगा। भाव कर्म का निरोध होने पर भाव कर्म के निमित्त से जो द्रव्य कर्म बंधते थे वो बंधते ही नहीं, वो बंध छूट जाएगा।
तो एक में कैसे क्या छूट गया, तो एक में थी गई हो सकती ना, तो छुट्टो पड़ जाए।
एक में मैंने एकत्व अनुभव कर रहा है, रागादि विकल्प से एकत्व हो रहा है अनुभव में, वो अलग हो जा, तो भेद ज्ञान करके भिन्न पड़ जा।
छुटो पड़ी जाए आखिर प्रैक्टिकल साइड से परिणाम होते हैं। ये लिखो लेने तेनाथी छुटो पड़ी जा, ये प्रैक्टिकल साइड से परिणाम बनी साइड से।
हाँ, परिणाम की बात है, भिन्न पड़ना जो भेद ज्ञान है, उसमें जो भिन्न पड़ने की बात है वो परिणाम की बात है।
फिर
वो तो पहले से ही परिणमन का स्टेज है, तो परिणति लाने की ही बात है, शुरू से ही वो बात है। ऐसा है, अमलीकरण का पर ध्यान नहीं है जिसका, जिसका अमलीकरण पर ध्यान नहीं है उसको क्या होता है, इस बात का इधर अर्थ क्या होता है, उस बात का इधर अर्थ क्या होता है। अलग अलग शास्त्र में जो बातें आती हैं कि चर्चा में वो पड़ जाते हैं, शास्त्र चर्चा को ही तत्व चर्चा मान लेते हैं, जबकि जिसको कार्य करना है वो पहले से ही अमलीकरण में आते हैं, परिणमन में ले जाते हैं बात को। ऐसे प्रथम भूमिका परिभ्रमण की वेदना की है, तो परिणमन आना चाहिए। विचार किया करे वो बात नहीं है, सिर्फ विचार की भूमिका नहीं है, परिणमन की भूमिका। कृपालु देव ने 195 नंबर का पत्र लिखा है कि तीन काल में ये परिभ्रमण की वेदना में आए बिना कर्तव्य और कर्तव्य की कोई सूझ किसी मुमुक्षु को होती ही नहीं है। और परिभ्रमण के वेदना के परिणमन में तो आया नहीं, वेदना का परिणमन आया नहीं, पर कर्तव्य और अकर्तव्य अपना समझ लिया, फिक्स कर लिया और करने भी लग गया। तो मुझे इतनी भक्ति करनी, इतनी पूजा करनी, इतना शास्त्र पढ़ना, इतना खाना, इतना नहीं खाना, अपना व्रत लेना, अपना त्याग करना, अपना ग्रहण करना, सब गड़बड़ है। कर्तव्य अकर्तव्य का समझ आएगा ही नहीं यथार्थ रूप से, तो शुरू से परिणमन की बात है। अब परिणमन का तो कोई चर्चा नहीं, और अलग अलग शास्त्र वचनों पर सूक्ष्म बातों पर चर्चा करें, क्या फायदा, क्या फायदा इससे, तो कोई फायदा नहीं।
अमलीकरण ने चर्चा सत्संग में विशेष हो गई है।
हाँ ठीक है, अमलीकरण की चर्चा होनी चाहिए। हम परिणमन क्या करते हैं, बात समझते हैं, लेकिन परिणमन क्या करते हैं और कहाँ से करते हैं, हमारी शुरुआत यथार्थ है कि नहीं। शुरुआत यथार्थ नहीं हो तो आगे की बात यथार्थ कहाँ से होगी, स्टेज तो बहुत है। मुमुक्षु की भूमिका के अनेक स्टेज है, फिर ज्ञानी के स्टेज आते हैं गुण स्थान वाले, तो हम ज्ञानी के स्टेज की चर्चा करें, पर मुमुक्षु की भूमिका की शुरुआत नहीं हो, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होता। ये तो अमलीकरण का ही विषय है, शुरू से ही अमलीकरण का ही विषय है।
चर्चा में
हाँ, इसलिए ज्ञानी का मार्ग बोला है कृपाल देव ने, क्या बोला, ज्ञानी का मार्ग है। ज्ञानी कहते हैं ऐसे तुम चलो, ऐसा उपाय करो, तुमको पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुमको खुद की योग्यता का भी पता नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम कहाँ खड़े हो तुमको पता नहीं है, किधर चलना हो तुमको पता नहीं है, तुम क्या करोगे, फिर भी करने जाओगे तो भटक जाओगे, और कोई होने वाला नहीं है दूसरा। और ऐसा ही हुआ है, अनंत काल स्वच्छंद में ही गया है, जीव ने, हमारे जीव ने धर्म साधन अनंत प्रकार के, सभी प्रकार के अनंत बार किया है, बाह्य धर्म साधन में कोई कसर नहीं रखे, मार्ग नहीं मिला है, इसका सबूत वर्तमान परिभ्रमण काल। कारण स्वच्छंद से अपनी मनमानी रीति से काम करना चाहा है, यानी का मार्ग पर चलने का विवेक नहीं है। जो बुद्धि एक गवार को भी होती है, राम का गवार होता है, गैया भैंसा चराने वाला, भेड़िया चराने वाले को, ये दर्द होता है पेट में या सिर में, डॉक्टर के पास चला जाता है, वैद्य के पास चला जाता है। इतनी अकल तो उसमें भी है, हम बुद्धिमान होते हुए भी, बुद्धिजीवी होते हुए भी हम अनजाने हैं, तो हमको जानकार चाहिए, वरना हम भटक जाएंगे। उतनी अकल नहीं लगाते, उतनी अकल तो नहीं लगाते हैं। उस विषय में हम क्रॉस आर्ग्यूमेंट करते हैं कि गुरु चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो निमित्त है, निमित्ताधीन बात मत करिए, इसके ऊपर जोर मत दीजिए। लो ठीक परमचंद जी, लेकिन ये बात निमित्त की नहीं है, वास्तव में निमित्त द्वारा ये बात उपादान की है। क्यों? कि मुझे ज्ञानी गुरु चाहिए, ये शुद्ध उपादान में आई कि निमित्त में आई? ये शुद्ध उपादान में आई। तो ये जो गावड़े का गवार है, अनपढ़ है, तो क्या ये सोचेगा कि मैं तो पढ़ा नहीं, वरना मैं किताब पढ़ लेता कि सिर दर्द होता है तो कौन सी दवाई ले सकते हैं, पेट में दर्द होता है तो क्या क्या दवाई लेनी चाहिए, मेडिकल बुक्स का स्टोर में चला जाएगा क्या कुछ? नहीं, मेडिकल स्टोर में जाना कि नहीं, कि नहीं जाना है, न मेडिकल बुक्स को पढ़ना, न मेडिकल स्टोर में दवाई लेने को जाना है। पर जाओगे तो मेडिकल स्टोर वाला देगा नहीं कि तुम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, मैं ऐसे दवाई नहीं देता। क्या उसको व्यापार नहीं करना है? ऐसा नहीं व्यापार चलता है, वो व्यापार ऐसा
नहीं चलता।
हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं सब, और हमने कभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी। डॉक्टर के पास गए बिना हम किताब पढ़ने को बैठ गए और हम दवाई लेने को भी चालू कर दिया, व्रत नियम करने लगे, भक्ति पूजा करने लगे और किताबें पढ़ने लगे। तो जितनी अक्कल ये गवार में होती है, उतनी भी हमारे में नहीं रही है, वो बात है। सीधी साधी बात है कि नहीं? ये तो क्रॉनिक डिजीज है, ये जो भवरोग है जीव का, वो तो अनादि का घर करके बैठा है, मामूली रोग नहीं है। 150 साल का रोग भी जाना मुश्किल होता है, रोग पुराना हो जाता है तो घर कर लेता है, आसानी से नहीं जाता। ये तो अनादि का भव रोग है, और वो भी अपने आप हमको निकालना है, ये मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं। उसमें तो जिसने मार्ग देखा है उसको उसके चरण में जाना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज
नहीं।
पर ये परम विवेक है, वो उपादान का विवेक है, निमित्त का विवेक नहीं है, वो उपादान का विवेक है। तो वंश ने चर्चा किया है, चर्चा किया है कि मेरी निमित्ताधीन दृष्टि है ही नहीं, ऐसा लेना ही नहीं कभी, ऐसा लिया है। मुमुक्षु को कौन सा चारा है?
तो सारे दुनिया के घर दो बात है।
क्या
भगवान
हाँ ऐसा ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? आगे ठीक है, ऐसा कहने वाला तो कोई है या तुम अपने आप जान लिया? तू परमात्मा है ऐसा नक्की कर, वो भी कोई कहने का गुरु था, तुमने अपने आप नहीं जाना कभी वो बात है। वो तो वितरागी है तो ऐसा ही कहेगा, वितरागी है तो ऐसा ही कहेगा, लेकिन तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि वितरागी है तो ऐसा ही कहेगा, मेरा राग है वहां तक तो मुझे उसके उसके भक्ति उसका आश्रय लेना
चाहिए
पड़ेगा। ये भी कहने वाला कोई गुरु होता है, और सच्चा गुरु ऐसा ही कहेगा कि तुम मेरी ओर मत देख, तू तेरी ओर देख, और वही इसका सच्चापन है। जो लोभी गुरु है वो ऐसा कहेगा कि तुम इधर रहो, तुम कहीं इधर उधर उधर मत जाओ, तुम मेरे चरण में रहो, मेरे कोई आश्रय करो, मेरा कहा माना करो, मैं जैसा कहूं वैसा किया करो। हैं? मैं तुमको मोक्ष दिलाऊंगा, मैं तुमको स्वर्ग दिलाऊंगा, मैं तुमको सुखी कर दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, तो ऐसे गुरु के पास कभी जाना नहीं। जो गुरु धक्का मारे उसके पास दोबारा जाना है, जो धक्का मारे उसके पास दोबारा
जाना
है, और जो लालच देवे उनके पास कभी
नहीं जाना।
हमारे ट्रस्ट में एक दफा ऐसा हुआ कि एक परचेज ऑफिसर रखने का पेशेंट खड़ा हो गया। तो ट्रस्ट में बहुत सी चीजें लानी पड़ती है, बड़ा कारोबार हो गया है, तो एक परचेज ऑफिसर रखना है, तो सब चीज खरीद उसके द्वारा करना। एक प्रमाणिक आदमी को हमने ढूंढ लिया
बराबर,
और ट्रस्ट के प्रमुख को बोल दिया, देखो ये आदमी बहुत प्रमाणिक है, अब जितनी भी खरीदी हो परचेज हो उनको सौंप दो। बोले कि मैं थोड़ा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, ले लो, हमारी उपस्थिति थी। तो क्या आप ट्रस्ट को कितना फायदा करा देंगे अगर आपसे हम खरीदी कराएंगे? और अभी भी हमारी खरीदी तो चालू है, हम पद्धति में आपको अपॉइंट करेंगे, तो आप ट्रस्ट को कितना फायदा कराएंगे? तो बोले कि मैं फायदा कराने के लिए नहीं आया। क्या बोला
जी,
विचारने पड़ गए कि पटांग जवाब देता है क्या? जवाब तो पटांग मिलता है इसे, इस विषय में तुमको कुछ कहना है तो कहा, अगर आप इंतजाम हो, इजाजत हो तो मेरे को दो बात, एक बात करनी है, दो शब्द बोलना है। अगर आपको कोई लालच देने वाला मिले कि मैं आपको बहुत फायदा करा दूंगा, मुझे परचेज सौंप दीजिए, इससे कभी नौकरी में रखना नहीं, इतनी बात करना है। क्या बोला कि मैं आपको बहुत फायदा करा दूंगा, ऐसे कहने वाले को ये अपॉइंटमेंट मत देना। आप मुझे देना नहीं देना मुझे कोई परवाह नहीं है, आपको जचे तो देना, मत जचे वरना मत देना, लेकिन ऐसे कहने वाले को मैं आपको बहुत फायदा करा दूंगा। आपके 5 लाख की खरीदी है ना, 25-50 हजार का तो ज्यादा फायदा हो ही जाएगा मेरे से, कभी इसे काम नहीं लेना। वो लालच देने वाला आपको फंसाएगा। हम तो कहेंगे जो भी हमारी ड्यूटी है प्रमाणिकता से करेंगे, फायदा नुकसान आपको देखना है, आप देख लेना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो हमारी प्रमाणिकता से काम करने वाले आदमी हैं, बात खत्म, इससे ज्यादा हमको कुछ बोलना नहीं है। ऐसे सच्चे गुरु है वो धक्का देंगे कि क्यों मुझे छोड़ता है, वो ऐसा बोलेगा और बुलाएगा इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, उधर कभी जाना नहीं, प्रतिज्ञा कर लेना उधर कभी जाना नहीं, ये बात है।
सच्चा गुरु धक्का ही मारे ना धोखा ही मारे,
कुछ भी करे धक्का भी मारेगा और धोखा भी
मारेगा,
डंडा भी मारेगा, सब कुछ होएगा। सोच समझ के जाना है, इसमें क्या है। टाइम तो हो गया।
जय हो भावी स्वामी भगवान, जय हो,
जय जिनेंद्र।